ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम आठवां स्कंद आठवां अध्याय, अध्याय का नाम है क्षीर सागर का मंथन, श्लोक संख्या 22 से 25। 25 नंबर श्लोक बोर्ड पर लिखा है, तो पहले हम 22 23 24 का अनुवाद पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 22। हो सकता है कोई तीर्थायु हो किंतु वह अच्छे आचरण वाला या मंगलमय ना हो। किसी में मंगलमय या अच्छा आचरण दोनों ही पाए जा सकते हैं, किंतु उसकी आयु की अवधि निश्चित नहीं होती। यद्यपि शिव जी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है, किंतु उनकी आदतें अमंगल सूचक होती हैं, यथा शमशान में वास। अन्य लोग सभी प्रकार से योग्य होते हुए भी भगवान के भक्त नहीं होते। श्लोक संख्या 23। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को पति के रूप में वरण कर लिया, क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र हैं और उन्हें उनकी चाहत भी नहीं थी, वे समस्त दिव्य गुणों और योग शक्तियों से युक्त हैं, अतः वे सर्वाधिक वांछनीय हैं। तात्पर्य, भगवान मुकुंद आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं, अतः उन्हें ना ही उनके लक्ष्मी देवी के आश्रय की आवश्यकता थी, ना ही उनके सानिध्य की, फिर भी लक्ष्मी देवी ने उन्हें पति रूप में अपनाया। श्लोक संख्या 24 का अनुवाद। भगवान के पास जाकर लक्ष्मी जी ने नवीन कमल पुष्पों की माला उनके गले में पहना दी, जिसके चारों ओर मधु की खोज में भौरे गुंजार कर रहे थे। तब भगवान के वक्ष स्थल पर स्थान पाने की आशा से वे उनकी बगल में खड़ी रहीं और उनका मुख लज्जा से मुस्कुरा रहा था। श्लोक संख्या 25। तस्याश्रयास्त्रे जगतो जनको जनान्या। वक्षो निवासम अकरोत् परमं विभूते। श्री स्वा प्रजा स करुणे निरक्षणेन। यत्र स्थिते धायत् साधिपतिं स्त्रीलोकान्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की तस्या उसका श्रिया लक्ष्मी त्रिजगतः तीन लोक के जनकः पिता जनन्या माता का वक्षः वक्षस्थल निवासम निवासः अकरोत् बनाया परमं परम विभूते ऐश्वर्यमान का श्री लक्ष्मी स्वाहा अपने प्रजा वंशज सा करुणेन करुणा से युक्त निरक्षणेन दृष्टि फेरते हुए यत्र जहां स्थिता रहते हुए एधयत वृद्धि की सा अधिपति महान निर्देशकों तथा नेताओं सहित त्रिलोकन तीनों लोकों को। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के पिता हैं और उनका वक्ष स्थल समस्त ऐश्वर्यों की स्वामिनी भाग्य की देवी माता लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी जी अपनी अनुकूल तथा कृपापूर्ण चितवन से तीनों लोकों तथा उनके निवासियों और अधिपतियों देवताओं के ऐश्वर्य को बढ़ा सकती हैं। तात्पर्य, लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान ने अपने वक्ष स्थल को उनका वास स्थान बना दिया, जिससे वे अपने चितवन से हर एक को देवताओं तथा सामान्य मनुष्यों को भी उपकृत कर सकें। दूसरे शब्दों में, चूंकि लक्ष्मी जी नारायण के वक्ष स्थल पर निवास करती हैं, अतः जो भी भक्त नारायण की पूजा करता है उसे वे देखती रहती हैं। जब वे ये जान लेती हैं कि कोई भक्त नारायण की भक्ति करने के पक्ष में है, तो वे उसे सारे ऐश्वर्य का सहज वरदान देने को उद्यत हो जाती हैं। कर्मी जन लक्ष्मी की कृपा तथा दया पाने का प्रयास करते हैं, किंतु नारायण के भक्त ना होने से उनका ऐश्वर्य डगमगा जाता है। नारायण की सेवा में लिप्त रहने वाले भक्तों का ऐश्वर्य कर्मियों जैसा नहीं होता, भक्तों का ऐश्वर्य उतना ही स्थायी होता है जितना कि स्वयं नारायण का। ओम अज्ञानस्तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का आज की भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। क्षीर सागर का मंथन, अमृत से पहले लक्ष्मी जी प्रकट हो गई हैं, हम सब भक्तों के लिए बड़ा रुचिकर विषय। लक्ष्मी जी की कृपा कैसे प्राप्त हो, कितने भक्त लोग चाहते हैं लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो, हर कोई चाहता है, पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के श्लोक में हम ये चर्चा करेंगे कि लक्ष्मी जी की कृपा क्या होती है और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य बताया है। इससे पहले जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उनके लिए सुर असुर मानव सभी बड़े ललायित हो गए। लक्ष्मी जी समुद्र की पुत्री हैं और वो स्वयंवर पे निकले हैं। हर किसी ने अपने आप को सोचा कि शायद मुझे भी वो स्वीकार कर ले, लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा कोई भी योग्य नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी भाग्य की देवी हैं, तो उनको अपने ही उपयुक्त योग्य व्यक्ति चाहिए जो सर्वोत्तम हो, सर्वश्रेष्ठ हो। वो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम कौन हो सकते हैं, भगवान के अलावा कोई हो ही नहीं सकते। अफ्रीका में जो भाषा है सिमोलिस बोलते हैं, सिमोलिस भाषा बोलते हैं ना, उसमें एक भाषा में भगवान को नंबर वन कहते हैं, बस भगवान का नाम है नंबर वन। जो नंबर वन है, लक्ष्मी जी नंबर वन को ही सिलेक्ट करती हैं और उनके पास जाके कमल की सुगंधित माला उनके गले में डाल देती हैं और उनके बगल में खड़ी हो जाती हैं, ये अपेक्षा करते हुए कि वो उनके अपने वक्ष स्थल में निवास देंगे। और भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उनको अपने वक्ष स्थल पर निवास देते हैं। तो उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य कर रहे हैं कि अतः जो भी भक्त नारायण की पूजा करता है वे उसे देखती रहती है। हम राधा राधिका रमन जी के जब दर्शन करते हैं, जितने ध्यान से दर्शन करेंगे उतने ध्यान से लक्ष्मी जी भी हमें देखेंगी और फिर अपनी कृपा दृष्टि हम पे डालेंगी। तो ध्यान से भगवान की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। जो ये कृपा है लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान की कृपा जो है, ये शिला प्रभुपाद जी कृष्ण पुस्तक में इसकी कुछ गुण बताते हैं, 6 गुणों का वर्णन करते हैं भगवान की कृपा के। पहला गुण है ब्रह्म। भगवान की कृपा को प्रभुपाद जी ब्रह्म भी बता रहे हैं। ब्रह्म का मतलब है असीमित रूप से विस्तृत हो सकता है, जो कि सर्वव्यापी है और अनलिमिटेडली एक्सपेंसिव, अनलिमिटेड अपने असीमित रूप से अपने आप को विकास कर सकता है, ये भगवान की कृपा है। कहते हैं जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, छप्पड़ तो एक सीमित जगह है, अनलिमिटेड आप सीमित रूप से कृपा। दूसरा है परमम। परमम का अर्थ है कि इस संसार में उसके समान कोई वस्तु नहीं है, परमम है, दिव्य है। तीसरा चिन्मात्रम, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, उसमें रंच मात्र में भौतिकता का मिश्रण नहीं है। चौथा है सत, यानी कि सनातन, कृपा सनातन रहेगी। और छठा है अनंतकम, जिसका कोई अंत नहीं है, असीमित। पांचवां सत, सनातन। तो ये 6 लक्षण कृपा के हैं। कौन नहीं चाहेगा ऐसी कृपा को जो असीमित रूप से उसका विकास होता रहता है। एक बार कृपा मिल गई उसके बाद उसका विकास भी होता रहता है असीमित रूप से, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, उसके तुल्य कोई भौतिक जगत में ऐसी वस्तु नहीं है, जो कि सत है, सनातन है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, उसमें रंच मात्र भौतिक चीज नहीं है और जो कि असीमित है। आप में से कितने लोग चाहेंगे ऐसी कृपा को? चाहेंगे ना सब, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब इस कृपा से होता क्या क्या है? अगर हम चाहते हैं तो तैयार रहिए, इस कृपा से होएगा क्या? भगवान बता रहे हैं इस कृपा की जो पहली किश्त यह है, हरिष्य धनम शनै। मैं ऐसे भक्त का जो मेरी इस कृपा की अभिलाषा रखता है, जिसके 6 लक्षण हैं, पहली किश्त में उसका सारा धन हर लेता हूं। दूसरा, उसके जितने भी सगे संबंधी हैं उसको त्याग देते हैं, वो बेचारा एकदम जिसे कहते हैं सड़क पे आ गया व्यक्ति, और वो पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर हो जाता है, और फिर भी वो भक्त बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, वो देख पाता है ये भगवान की कुछ कृपा है, और फिर भगवान अपने आप को पूर्ण रूप से उसको दे देते हैं। और क्या चाहिए, पूर्ण रूप से वो भगवान उसको दे देते हैं, ये कृपा भगवान की है। तो ये भगवान की कृपा को समझना बहुत कठिन है। कर्मी लोग तो क्या, भक्त लोग भी समझ नहीं पाते ये भगवान की कृपा कैसी है। भगवान हर लेते हैं, भगवान का नाम है हरि, तो हर लेंगे जो भी हमारे पास धन इत्यादि है। आचार्यगण पूछते हैं ऐसा क्यों करते हैं भगवान, भक्तों को इतना कष्ट क्यों देते हैं? ये केवल एक नए साधक के लिए नहीं है, बड़े बड़े भक्त पांडवों को, प्रहलाद महाराज, सभी को ये भक्त सहने, ये कष्ट सहने पड़े। क्यों? बिना कष्ट दिए के काम नहीं हो सकता था। भगवान की तुलना दूसरे आचार्यगण उत्तर देते हैं, इसलिए कि जो भगवान है बड़े ही स्ट्रिक्टली मर्सीफुल है, बहुत कठोर है, और कठोरता से दयालु है। उदाहरण, जैसे पिताजी बच्चे को मार मार के उसको पहली बार स्कूल भेजते हैं क्योंकि इसका भविष्य इसी में अच्छा है। इसलिए भगवान जो धन हरते हैं, ऐश्वर्य हरते हैं, वो इसलिए कि पूर्ण रूप से सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से मुक्त हो जाए, और इसके जीवन का लक्ष्य केवल एकमात्र मुझे आकर्षित करना है, मेरे को मुझसे प्रेम करना है, बस मैं ये चाहता हूं। जब तक इसके पास ये ताम झाम रहेगा, ये उलझा रहेगा, तो सब हार लेते हैं। और जब सब हार लेते हैं और भक्त को देखते हैं कि भक्त अभी भी स्थिरता से भक्ति कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं। षट ऐश्वर्य पूर्ण भगवान जब उनके हृदय में बंद हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे, फिर किस चीज की आवश्यकता रहेगी लक्ष्मी जी के साथ। ये भगवान की कृपा इस ढंग से ऑपरेट करती है। तो आम व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता, आम व्यक्ति क्या बड़े बड़े प्रजापति भी इसको नहीं समझ पाते। शिव जी की भार्या सती के पिता कौन थे? दक्ष। दक्ष को ऐसा लगा कि शिव जी ने उनका अपमान किया, तो दक्ष ने उनके ऊपर बहुत क्रोध किया, क्या ये ऐसा व्यक्ति है, शमशान घाट में रहता है, नंगा घूमता है, मैंने क्यों अपनी बेटी को इसको दे दिया ब्रह्मा जी के कहने पर। फिर अपने वो यहाँ पे एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, सती माता जबरदस्ती, शिव जी मना भी करते हैं फिर भी वहां पहुंच जाते हैं, और वहां पे भी वो शिव जी का अपमान करते हैं। तो सती जी दक्ष को बताती है, भागवतम के चौथे अध्याय का, चौथे स्कंद के चौथे अध्याय का है श्लोक 21 नंबर, वो कह रहे हैं मेरे प्रिय पिता, जो ऐश्वर्य हमारे पास है वो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, और आप जैसे जो लोग कर्मकांडी हैं उनको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग केवल अपने शरीर की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में लगे हैं, लेकिन हम जब चाहे अपने इस ऐश्वर्य को प्रकट कर सकते हैं। शिव जी का ऐश्वर्य, शिव जी तो संहार कर सकते हैं, और बाद में उन्होंने पूरे यज्ञ स्थली का पूरा संहार कर दिया। तो भक्तों के पास ऐश्वर्य होता है, ये ऐश्वर्य कभी कभी बाहरी दृष्टि से दिखता है, कभी कभी नहीं। भक्तों के ऐश्वर्य और एक आम व्यक्ति के ऐश्वर्य में बहुत अंतर है। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो आम व्यक्ति को धन ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्त होता है वो उसके कर्मों का फल होता है, और जो भक्तों को ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो भगवान की कृपा होती है। भगवान की कृपा के 6 लक्षण है। भक्तों का ऐश्वर्य बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता, दिखता नहीं है। कई बार शिला प्रभुपाद जी जब भारत में थे, संघर्ष कर रहे थे, थर्ड क्लास के रेल के डब्बे से यहां आते थे वृंदावन से दिल्ली, खुद बोझा उठा के पेपर उठा के आते थे, और कई कई बार अपना ब्रेकफास्ट और लंच भी स्किप कर देते थे। उनको जो मध्यकोरी में पैसा मिलता था उसे वो पेपर खरीदते थे, अपने लिए दाल रोटी नहीं खरीदते थे। कितनी तकलीफें सहनी पड़ी प्रभुपाद जी को, नहीं प्रभुपाद जी फिर भी ऐश्वर्यवान थे, प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। और उसके बाद जब अमेरिका में गए, उनको सफलता मिली, प्रभुपाद बड़ी बड़ी रॉल्स रॉयस गाड़ियों में घूम रहे हैं। एक रिपोर्टर ने पूछा ये कैसे गुरु हैं आप, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो। प्रभुपाद वाला, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो लोहे की गाड़ी है, गुरु के लिए सोने की गाड़ी आनी चाहिए, आप क्या जाने गुरु क्या स्तर हो गया है। तो ये प्रभुपाद फिर भी विचलित नहीं हुए उस ऐश्वर्य से जो दिखने वाला था, और जो नहीं था उनके पास धन इत्यादि, तब भी विचलित नहीं हुए। ये भक्त का ऐश्वर्य होता है। श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ये समझने की बात है। ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है कि कुछ हमारे पास है। जो भक्तों का ऐश्वर्य है वो आत्मा की संपत्ति है, और जो एक आम व्यक्ति के पास ऐश्वर्य है वो उसकी शरीर की संपत्ति है। शरीर समाप्त होते ही सारे ऐश्वर्य समाप्त, धन यश सुंदरता बल ज्ञान वैराग्य सब समाप्त। लेकिन जो भक्त का ऐश्वर्य है वो आत्मा की संपत्ति है, आत्मा का स्वाभाविक गुण है, वो तो सनातन है, वो कैसे नष्ट हो सकता है। आत्मा की क्या संपत्ति है? What does the soul possess? आत्मा की क्या संपत्ति है, आत्मा के पास क्या है? हां, कृष्ण से प्रेम, कृष्ण के प्रति सेवा की भावना, सभी सुंदर गुण, भक्तों के गुण, ये आत्मा की संपत्ति है। किसी भी स्थिति में भक्ति का एक गुण है अप्रतिहता, किसी भी तरह की भौतिक परिस्थिति भक्ति को नहीं रोक सकती। इसलिए भक्तों का ऐश्वर्य कभी भी समाप्त नहीं होता, और भक्तों का ऐश्वर्य हमेशा बढ़ता ही रहता है। समझने की बात है, हमें समझना चाहिए कि हमारा ऐश्वर्य क्या है। हमारा ऐश्वर्य ये भक्ति है जिससे हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। ऐश्वर्य जब किसी एक व्यक्ति के पास होता है तो क्या बन जाता है? ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्य से क्या होता है? किसी के पास धन है, यश है, बल है, विद्या है, ज्ञान है, उसे क्या हो जाता है? वो आकर्षित करता है दूसरों को, आकर्षक बन जाता है। अब हमारे पे निर्भर है हम किसको आकर्षित करना चाहते हैं। अगर हम इस संसार के लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, बहुत फेमस होने चाहिए हम। और अगर हम राधा राधे राधिका रमन जी को आकर्षित करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए हमारे पास? भक्ति, प्रेमय भक्ति होनी चाहिए। मनुष्य जीवन को सफल तब बताया गया है, भागवतम के दशम स्कंध में अक्रूर जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन सफल तब माना जाता है जब भगवान उस जीवात्मा को पहचान ले। When Krishna recognizes, then our human form of life is successful. इस संसार के लोग हमें कितनी ही उपाधियां दे दें, कितने ही पुरस्कार दे दें, मृत्यु सर्वहरस चाह, सबको सब हर लिया जाएगा ना? लेकिन मृत्यु क्या, मृत्यु से पहले ही समय के साथ वो हर जाता है ना? और भगवान को अगर हमने आकर्षित कर लिया तो फिर भगवान हमारे से आकर्षित हो जाएंगे। भगवान ने भेदे में सुनाते हैं, एक भक्त है जो पंजाब से है, ऐसे बात हो रही थी, दर्शन करने आए थे, उन्होंने पंजाबी में बोला, बोला सानू तो की करना है, भगवान को रींझना है। भगवान को रींझना है, हमने पंजाबी में कहना रींझना, भगवान को आकर्षित करना है, हर कार्य से भगवान को आकर्षित करना है। बाकी लोगों को तो हम देखते हैं तो आकर्षित करने का प्रयास भी करते हैं, वो कभी तो आकर्षित हो गए, कभी हमें धुतकार देते हैं और हम कुंठित हो जाते हैं। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जो ऐश्वर्य है वो है भक्ति। और हम देखते हैं कि ये जो भक्ति है एक आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। कई बारी लोग हमें भी देखकर बोलते हैं, ये देखो बेचारे ब्रह्मचारी अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, IIT के इंजीनियर थे, अब इनकी हालत देखो, सड़क पे भीख मांग रहे हैं, हद हो गई है, क्या हालत हो गई बेचारों की। एक बार हम दर्शन कर रहे थे शाम को, मैंने देखा सामने मेरे एक ऑफिस का कुलीग खड़ा था, उसने मुझे देखा और रोना शुरू कर दिया, ओह क्या हालत होगी तेरी। मैंने कहा चलो चलो चलो, उठा गए उसको अपने ऑफिस में लाया, बिठाया, समझाया, तो थोड़ी देर में फिर दोबारा रोने लगा। क्यों? बोला मेरा एक कुत्ता था वो मर गया, बहुत परेशान हो, है ना? और फिर उसको समझ आया, मैंने समझाया उसको कि हमने कुछ खोया नहीं है, बहुत कुछ पाया है। पहले मैं नेशनल कंपनी में काम करता था, मैं इंटरनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, बेटर प्रॉस्पेक्ट्स है। पहले मैं खुद गाड़ी चलाता था, अब शोफर ड्रिवन गाड़ी है मेरे पास। क्या किस चीज की कमी है? भक्तों को किसी भी चीज की कमी नहीं होती। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए आप, क्या आपकी कभी भी कोई काम रुका है, कोई आवश्यकता पूरी नहीं हुई, ऐसा हुआ है कभी? हो सकता है हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से, दीक्षा लेने के बाद हमारा बिजनेस में नुकसान हो गया हो, हुआ है कभी? हो जाता है कई बार, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन ये पूरा आश्वासन होना चाहिए, जो भक्तों के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं वो उनके कर्मों के फल नहीं होते, वो भगवान की कृपा होती है। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं इस तरह का भक्त कहां, भगवान मुझे कहां पहचानते होंगे, कोने में कहीं पड़ा हूं, असंख्य जीवात्माओं में से मैं एक छोटी सी जीवात्मा, पता नहीं टूटी फूटी माला करता हूं, भगवान मुझे कहां पहचानते होंगे। नहीं, भगवान जानते हैं, पहचानते हैं, यही तो भगवान की शक्तियां हैं। भगवान हर जीव को विशेष उसके साथ संबंध है। तो भक्तों, भक्त लोग जैसे ही भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब ये तेरे कर्मों का फल है, मैं देखूंगा कैसे करना है इसको, कब हरना है, कब देना है, कब तेरे को ऊपर नीचे पटकना है, फिट करना है तेरे को अब यहां लाने के लिए, अब तुम भूल जाओ जैसे भी है, रुलाएंगे, हंसाएंगे, जो मर्जी करेंगे, उसको अपने पास लाने के लिए फिट कर देंगे बिल्कुल। तो भक्तों को उसमें चिंतित नहीं होना चाहिए। द डिवोटी शुड बी केयरलेस कि क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव, ये भगवान की कृपा है, सीधा मान लें। अगर ये नहीं समझेंगे तो भक्त विचलित हो जाते हैं, उसको दोष देंगे, उसको दोष देंगे, उसको दोष देंगे, भक्ति में विचलित हो जाएंगे, भक्ति सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, और जो हमारा ऐश्वर्य हमें प्राप्त हुआ उसको हम खो बैठते हैं। तो कर्मी लोग क्या, बाहर के लोग क्या, भक्त स्वयं विचलित हो जाते हैं, भगवान की कृपा को समझ नहीं पाते। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की कृपा को समझने के लिए भी कृपा की आवश्यकता है। एक बार प्रभुपाद विदेश में गए, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो एक नदी के तट पे गए अपने भक्तों के साथ, तो तभी एक व्यक्ति नाव में बैठ के आया और उसने प्रभुपाद को और उन सभी भक्तों को ऐसी गालियां सुनाई बोला क्या फ्री में खाते रहते हो, पैरासाइट लोग हो आप, समाज पे बोझा हो, कुछ करते धरते नहीं हो, बस खा पी के घूमते रहते हो, काम करो मेहनत करो तब मालूम चलेगा। निखुट्टू कहेंगे सबके सब प्रभुपाद को सुनाते रहे, और प्रभुपाद ने अपने आप को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया। प्रभुपाद ने बोला आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हमें हमें बिना काम के सब कुछ मिल रहा है, तो आप क्यों बेफिजूल काम कर रहे हो, आइए ना आप ही ज्वाइन कीजिए क्यों आप फालतू में। तो लोग समझ नहीं पाते, बहुत हैरान हो जाते हैं कि लोग कुछ करते नहीं है, फिर ऐसे कैसे इनके पास, जब देखो जो चीज इनको चाहिए आ जाती है। भागवत के दशम स्कंद के 39वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, किम अलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्री नकेतने तथापि तत्परा राजन ना ही वाचंती किंचना। हे राजन, जिसने लक्ष्मी के आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट कर लिया हो, भला उसके लिए क्या अलभ्य है, क्या अलभ्य है, किम अलभ्यम, क्या अलभ्य है, क्यों हम चिंता करें, कुछ भी अलभ्य नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा होने पर भी जो उनकी भक्ति में समर्पित है वे कभी भी उनसे कुछ नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि भगवान को तंग करते रहते हैं भक्त, वो कुछ नहीं चाहते। अगर समझ लीजिए अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो आधार दे, अगर कोई कामनाओं के साथ भी भगवान की पूजा करता है कि हाँ मुझे ये भौतिक लाभ चाहिए जैसे ध्रुव महाराज ने किया, तब भी भगवान उसको इस ढंग से वो ऐश्वर्य देते हैं कि बाद में भगवत नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं नहीं अब नहीं छोड़ूंगा इसी इच्छा से तुम मेरे पास आए थे, ये लो अपना राज्य 36,000 साल तक तुम इसका भोग करोगे। ध्रुव महाराज कह रहे मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, आए तो इसी इच्छा से थे, ये भी लो और शुद्ध भक्ति भी लो। इसलिए अगर इच्छा है भी तो भी हमें देवताओं की शरण में नहीं, कृष्ण के ही शरण में जाना चाहिए। हम देखते हैं कई भक्त हमसे शेयर करते हैं, कई बार हम लोग आ जाते हैं उत्साहित होकर भावुक होकर सब कुछ छोड़ के भक्ति में आ जाते हैं, बाद में थोड़ा रियलाइज होता है वो पुराने दिन ज्यादा अच्छे थे, कभी भी कहीं भी कुछ खा लिया, कहीं भी कुछ सिनेमा देख ली, एक अलग ही ऐश्वर्य था पहले हमारा, फ्रीडम थी कुछ, अब यहाँ ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, कई बार भक्त लोग मिस करते हैं और मिस करते हैं उस इंद्र तृप्ति को, तो कई लोग तो वापिस बहुत स्थूल रूप से करना शुरू भी कर देते हैं इंद्र तृप्ति, कई लोग करते नहीं है डर होता है तो मानसिक रूप से है ना उसकी बातें करेंगे, उसको सोच सोच के प्रफुल्लित होंगे, हर्षित होंगे, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में वाइकेरियसली प्लेजर लेते हैं। तो ये मिसकंसेप्ट है क्योंकि हम जानते नहीं है कि असली ऐश्वर्य क्या है। जो एक भौतिकवादी व्यक्ति का ऐश्वर्य है वो फ्लिकरिंग है, जैसे कि चंद्रमा का जब रिफ्लेक्शन पानी में पड़ता है और पानी जब हिलता है तो चंद्रमा भी हिलता है, और एक बच्चा जो अज्ञानी है वो क्या समझता है कि यही चंद्रमा है, वो बार बार उसमें हाथ डालता है इस चंद्रमा को पकड़ना है, और पानी हिलता रहता है चंद्रमा भी हिलता रहता है, ये छाया लक्ष्मी है। और जो असली लक्ष्मी है वो भक्तों के पास रहती है, तो छाया लक्ष्मी तो कभी भी हाथ में नहीं आएगी, लेकिन हमें उत्साहित करती रहेगी, उत्तेजित करती रहेगी, लेकिन हमारे हाथ में कभी नहीं आएगी और संतुष्टि कभी नहीं देगी। जैसे अभी क्लास खत्म होने के बाद हम संप्रसाद पाने जाएंगे, कुछ ऐसा ऊपर अरेंजमेंट कर दें कि प्लेट में प्रसाद दिखाई दे लेकिन हाथ में ना आए, हैं बड़े बढ़िया पकवान हो हाथ मारते रहे, गुलाब जामुन है, समोसा है, पिज्जा है, जो आपकी इच्छा वो सब है, दिखाई दे रहा है लेकिन हम पा नहीं पा रहे उसको, तो कैसी हालत होगी। ये है पौधे जगत की हालत, दिखाई देती है लक्ष्मी है मैं इसका भोग करूंगा लेकिन भोग कर नहीं पाता। इसलिए जो भक्तों का ऐश्वर्य असली है, क्योंकि जहां लक्ष्मी है वहीं संतुष्टि है, भक्तों के गुण उनका ऐश्वर्य है और यही भगवान को आकर्षित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उनको एक ब्राह्मण ने पुकारा कि आप हमारे यहाँ आके लंच लीजिए, भोजन स्वीकार कीजिए। महाप्रभु ने बोला मैं तो लखपति के यहाँ जाता हूँ। वो बेचारा उदास हो गया, मैं तो दरिद्र हूं। तो उन्होंने बोला लखपति का मतलब है जो कम से कम 100,000 नाम लेता हो। तो असली धन ये हरिनाम धन है, गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। साफ साफ बताइए मृत्यु के समय भगवान क्या चेक करेंगे, कौन सा बैंक बैलेंस चेक करेंगे, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में पैसा पड़ा है उसके, या स्विस बैंक में पैसा पड़ा उसको चेक करेंगे, या जो हरि नाम का धन है उसको चेक करेंगे? तो किसमें समझदारी, किसमें है, किसको कमाएं, किस ऐश्वर्य को बढ़ाएं? ये मनुष्य जीवन में ही इस ऐश्वर्य को बढ़ा सकते हैं, और ये भगवान को आकर्षित करती है। राजा प्रताप रुद्र, बहुत इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु एक बारी दर्शन दे दें। महाप्रभु ने बोला, नहीं, राजा भोगी होते हैं, सन्यासी उनका दर्शन नहीं करेंगे, नहीं देंगे दर्शन। बेचारे बहुत लालायित रहे। लेकिन जब जगन्नाथ रथ यात्रा आई तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा वही राजा प्रताप रुद्र झाड़ू लगा रहे थे भगवान जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। उनकी इस विनम्रता को देखकर भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, और जब सात संकीर्तन पार्टी में एक साथ चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे, ये दुर्लभ दर्शन केवल राजा प्रताप रुद्र और कुछ भक्तों को ही हुए। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला, देखो अब भगवान ने तुम पर कृपा कर दी है। तो अपने गुणों से हम भगवान को आकर्षित करते हैं। पूरे भौतिक जगत के लिए हम आकर्षित ना भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान के लिए आकर्षित होने चाहिए। सनातन गोस्वामी पाद जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे तो जारीखंड में उन्होंने कुछ तालाब का गलत पानी पी लिया, उससे उनके पूरे शरीर में एक्जिमा हो गया, फोड़े फूसियां हो गए, खून बहने लगा। वो बेचारे इतने उदास हो गए, इस शरीर के साथ मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूँ, रथ यात्रा में रथ के नीचे आके अपना शरीर त्याग दूंगा, तो ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन जब भी महाप्रभु उनको देखते थे उनका आलिंगन कर लेते थे, उनको और बहुत शोक होता था कि महाप्रभु को मैंने दूषित कर दिया। तो इस ढंग से वो सोच रहे थे तो जगदानंद पंडित ने उनको बोला, तुम वृंदावन चले जाओ। तो उन्होंने बोला, हाँ ये बिल्कुल विचार ठीक है, मैं वृंदावन चला जाता हूँ। तो महाप्रभु को जब उन्होंने बताया तो महाप्रभु बहुत गुस्से हो गए, बोले जग्गा की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें विचार देने के लिए, बच्चा है वो तो, तुम उसके गुरु के समान हो। और फिर उसको बोला महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला, जब मैंने तुम्हें पहली बार आलिंगन किया था तो मुझे कोई दुर्गंध नहीं आई, मुझे तो इसमें चतुष्मा का सुगंध आया। चतुष्मा होता है चार चीजों से बनता है, अगुरु, चंदन, कपूर और कस्तूरी। बोले इसकी मुझे सुगंध आ रही थी, और तुम्हें छूकर तो मैं पवित्र हो रहा था। और उसके बाद महाप्रभु ने दोबारा से उनका आलिंगन कर लिया, और इस बार सनातन गोस्वामी का जो देह था दिव्य देह एकदम सोने की तरह चमकने लगा। अब वहीं पे सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर भी थे। हरिदास ठाकुर ने बोला, महाप्रभु ये आपकी विशेष लीला है, आप ही ने इसको जारीखंड में गलत पानी पिलवाया, आप ही ने इसके शरीर पे एक्जिमा करवाया, और आप उसको उसका परीक्षा लेने के लिए आपने ये सब किया, ये सब आपकी दिव्य लीला है। तो जो भक्तों के जीवन में कुछ कष्ट आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और वो समय होता है अपनी भक्ति को एक्सेलरेट करने के लिए, टॉप गियर में लाने के लिए, वो समय होता है अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए। भक्तों का ऐश्वर्य है भक्ति, और कठिन समय में अपने अच्छे गुणों को विकसित करना, सहनशीलता, विनम्रता, क्षमा करना, तपस्या, इससे भगवान आकर्षित होते हैं। इसमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, भगवान से शक्ति मांग के। जो कठिन समय होते हैं ये सब ट्रांजिटरी है, कोई भी जो अच्छा समय बुरा समय तो एक स्वप्न के समान है, वो तो बीत ही जाएगा, निकल ही जाएगा। इसमें हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या हमारा एक्शन होता है, भगवान उसको देखते हैं। तो ये समझ हमेशा बना के रखनी चाहिए। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं, एक भक्त को अपने मन और बुद्धि को हमेशा क्लियर रखना चाहिए, भौतिक उतार चढ़ाव में भी वो सही निर्णय ले सके। तो भगवान भक्तों के इस गुण से आकर्षित होते हैं, और भक्तों कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। सनातन गोस्वामी पाद का ऐश्वर्य देखिए, रूप और सनातन, प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर, सब कुछ छोड़कर भिक्षु बन गए, केवल कोपिन डाल के घूम रहे हैं वृंदावन में और मधुकरी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री थे और कहां वृंदावन में। कोई कह सकता है अरे क्या हालत हो गई, लेकिन वो क्या है, गोपी भाव रसा मतब दिलहरी कल्लोल मग्नो महु, जो गोपी भाव के रस के सागर में डुबकी लगा रहे हैं, पूर्ण रूप से आनंद में है। और उनका ऐश्वर्य देखिए, सनातन गोस्वामी जी भजन कर रहे हैं और उनके पास एक पारस पत्थर है, कहां रखा हुआ है उसको, कूड़ेदान है, ये उनका ऐश्वर्य है ना। आप कहीं ऐसा मत करना घर जाके जो भी चांदी के सिक्के हो वो कूड़ेदान में डाले, हमारा ऐश्वर्य है, हम नहीं कर सकते। सनातन को लो ऐश्वर्य, कोई जरूरत ही नहीं उसकी, पूर्ण रूप से अकिंचन। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी के आने वाले सनातन गोस्वामी आ रहे थे, उनकी इच्छा हुई मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, उनके लिए कुछ बनाऊं, खीर बनाऊं, कुछ है ही नहीं। इच्छा हुई, राधा रानी प्रकट हो गए, एक गांव की साधारण कन्या बन के आई। ये गोस्वामी ये लो, ये दूध लो, ये चीनी लो, ये लो बनाओ भगवान के लिए कुछ, अपने आप ही कहीं से आ गए। उन्होंने बनाया, सनातन गोस्वामी ने जब पाया बोले नहीं ये यहाँ की नहीं है, किसने बनाई खीर? बोले ऐसे ये लड़की आई थी, कहाँ से आई थी? बोले क्यों सेवा ले ली तुमने राधा रानी से? ये ऐश्वर्य है देखिए भक्तों का, राधा रानी आपके खीर का सामान दे रही है। हम जहाँ अपनी एक नौकरानी होती है और वहाँ एक राधा रानी आ रही है ना, जहाँ से हम नौकरानी का नाम राधा रख सकते हैं और कुछ नहीं, स्वयं राधा रानी आ रही है भक्तों की सेवा के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े जमींदार के बेटे, 12 लाख सोने की मुद्राएं की कमाई उनके, सब कुछ छोड़ के आ गए जगन्नाथपुरी में, गंदी नाली से जो कि गायें भी नहीं खाती थी, उस चावल को, सड़े हुए दुर्गंधित चावल को उठाकर धोकर उसको खा रहे थे। महाप्रभु ने आके हाथ पकड़ लिया, ये फीस्ट अकेले अकेले कैसे खा सकते हो, उनकी हथेली से लेके खुद खा गए। ये है भक्तों का ऐश्वर्य। वही रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में केवल 2 दिन में 150 ग्राम छाछ पीते थे, खबर फैल गई रघुनाथ दास स्वामी का पेट खराब हो गया। अरे 2 दिन में 150 ग्राम छाछ पीने में क्या पेट खराब होगा? वैद्य जी आए, नव्स पकड़ी, बड़ा बहुत ज्यादा खीर खा ली है। रघुनाथ दास स्वामी ने चोरी चोरी खीर खाई होगी? नहीं, दिव्य लीला में प्रवेश कर गए, राधा कृष्ण को खीर का भोग लगाया, वही खीर खा ली, पेट खराब हो गया। ये ऐश्वर्य है, यहां की खीर को छोड़ दिया, वो खीर खाएंगे तो कहां की? आध्यात्मिक जगत के। ये भक्तों का ऐश्वर्य, असली ऐश्वर्य है। तो ये तो हो ही बड़े बड़े उच्च भक्तों की बातें, कैसे हम तो इसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन एक साधारण भक्त जो नवदीक्षित भक्त भी है, भगवान उसका पूरा ध्यान रखते हैं और भगवान उसकी परीक्षाएं लेते हैं। तो हमें हर स्थिति में भक्ति करनी है और योगक्षेम वहां में हम, भगवान हर स्थिति में हमारी जो भी हमारी इच्छा है उसको पूरा करते हैं। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इस अपने असली धन को ना केवल संभाल के रखें बल्कि इसको और बढ़ाएं कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि भक्तों के पास कभी भी भौतिक रूप से कुछ धन इत्यादि नहीं होगा। जब भगवान को लगता है कि इस धन को देने से ये अपनी भक्ति से विचलित नहीं होगा तो भगवान उसको भरपूर मात्रा में धन देते हैं ना। सुदामा जी का उदाहरण है हमारे पास। सुदामा जी बहुत दरिद्र थे, उनकी पत्नी उनको बोलती थी जाओ कुछ मांग के आओ, उनकी इच्छा नहीं होती थी मांगने की, बोले चलो मिल के आता हूँ। और भगवान जब वापिस आए तो भगवान ने उनको कितना ऐश्वर्य दिया। तो भगवान जब देखते हैं कि भक्त जब पूर्ण रूप से स्थित है भक्ति में तब उसको भौतिक ऐश्वर्य देते हैं। तो भक्तों को इस चीज से विचलित नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से, भक्तों की कृपा से शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन में आ गए हैं, हमें ये भक्ति लता बीज प्राप्त हो गया है, ये हमारा असली धन है। इसको हम इसको सुरक्षित रखें और इसको और आगे विकसित करें, और जो भक्तों के अंदर अच्छे गुण है उनको हम विकसित करने का प्रयास करें। तो ये धन कैसे बढ़ा सकते हैं, जो हमारा ऐश्वर्य है इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? भक्तों के संग से और क्या करें, श्रवण कीर्तन द्वारा इसका सिंचन करें और इस ऐश्वर्य को बांटें। जितना इस धन को बांटेंगे ये धन क्या होगा, और बढ़ेगा। जितना इस भक्ति रूपी धन को हम वितरण करेंगे उतना ये धन बढ़ेगा। और साथ में भक्तों को पूर्ण रूप से इसमें निष्ठा होनी चाहिए, अवश्य रक्षे में विश्वास हो, भगवान मेरी पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे। कई बारी स्थूल रूप से हम इन तृप्ति में लिप्त हो जाते हैं, कई बारी सूक्ष्म रूप से, कई बार हम देखते हैं कि जिस सेवा में ज्यादा ऐश्वर्य है वो सेवा हम करना चाहते हैं। इस सेवा में हमें ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी, ज्यादा नाम मिलेगा, तो हम वैसा करना चाहते हैं। लेकिन असली ऐश्वर्य क्या है? भक्तों के वास्तविक गुण। एक बार जैसे रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, कीर्ति गौण मध्य जीवे कौन बड़ कीर्ति, कृष्ण भक्त बलिया जहां हाय ख्याति। ख्यातियों में समस्त यशस्वी कार्यों में कौन सा सर्वाधिक यशस्वी है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में विख्यात है वही सर्वाधिक यश तथा कीर्ति भोगता है। जो भक्त का यश है वो हमेशा स्थायी रहता है। ये भी यश विश्व त्रिभुवना। आज श्री प्रभुपाद जी, आज हम इस वर्ष में इस्कॉन के 50 वर्ष की एनिवर्सरी मना रहे हैं। हमारे 670 के लगभग केंद्र हैं पूरे विश्व में। अगर कोई व्यक्ति हर केंद्र के में समय का एक पूरा एक घड़ी बना दे ऐसे, तो मेरे ख्याल से पूरे 24 घंटे में प्रभुपाद जी की निरंतर पूजा होती रहती होगी। हर जगह कहीं ना कहीं जय प्रभुपाद बोला जा रहा होगा, है ना। ये प्रभुपाद जी का ऐश्वर्य है, प्रभुपाद जी का यश है। तो यश का एक ऐसा गुण है, कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, यश का ये चरित्र है कि जो इसके पीछे भागता है ये आगे आगे भागता है, और जो इससे दूर भागता है वो इसके पीछे पीछे भागता है। तो अगर हम भक्त यश की कामना करेंगे तो कभी हाथ में नहीं आएगा। लेकिन हम यश को बोले हमें यश नहीं चाहिए, तो यश पीछे पीछे भागेगा। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था का नाम में अपना नाम कहीं नहीं रखा, लेकिन आज पूरे विश्व में लोग जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद कह रहे हैं। बोलिए जय श्री प्रभुपाद। ये प्रभुपाद जी का यश है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने फिर पूछा, धनवानों में सर्वोच्च कौन है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो राधा तथा कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा धनी है वही सबसे बड़ा धनवान है। जिसके पास, जिसके हृदय में प्रेम है वही सबसे बड़ा धनवान है। देखिए, जब एक किसी के पास धन होता है उस धन से वो क्या क्या कर सकता है? धन की चाह क्यों रखते हैं? इंद्र तृप्ति, सुख और सुख कैसे प्राप्त होता है? धन से नोटों को हाथ में रखें कैसे करें, हैं? वो कैसे करते हैं? हां जी, चीजें खरीद के। धन से हमारे पास परचेजिंग पावर आती है, है ना। ऐसा नहीं है किसी ने बहुत बड़ा बंगला लगाया और ये दिखाने के लिए मेरे पास कितना धन है वो बाहर सीमेंट के ऊपर 1000 रुपए के नोट चिपका दे, है? ऐसा तो नहीं होगा ना। लोहे के डब्बे के ऊपर बढ़िया 1000 रुपए के नोट चिपका दे, वो कितनी बड़ी गाड़ी है? नहीं, धन से उसके पास परचेजिंग पावर आती है, वो कुछ खरीद सकता है। भक्तों के पास कौन सा धन है? भक्त लोग क्या खरीद सकते हैं? किसको खरीद सकते हैं? स्वयं कृष्ण को खरीद सकते हैं। और क्या चाहिए? सबसे बड़े धनवान व्यक्ति को ही खरीद लिया तो और क्या चाहिए? तो इसलिए कई बारी भागवतम में हमने देखा होगा, भक्त को भी भगवान कह के पुकारा जाता है। नारद मुनि को भी भगवान कहा गया, सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान कहा गया। क्यों? क्योंकि जो षट ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है वो उनके हृदय में स्थित है, भगवान है। तो भक्त अपने हृदय में जो प्रेम है उसे भगवान को भी खरीद लेते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में थे तो वल्लभ भट्टाचार्य ने उनको अपने घर में आमंत्रित किया। वहां पे चैतन्य महाप्रभु थे, वल्लभ भट्टाचार्य, रूप गोस्वामी और एक बहुत बड़े भक्त थे, विद्वान, जिनका नाम था रघुपति उपाध्याय। तो महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय को बोला कि कुछ कृष्ण के बारे में कहें। तो रघुपति उपाध्याय ने अपनी स्वरचित एक कविता गाई और उस कविता का सार ये था कि जो लोग भौतिक अस्तित्व से डरते हैं, कुछ लोग वैदिक शास्त्रों को पूछते हैं, कुछ स्मृति शास्त्रों को पूछते हैं, कुछ महाभारत को पूछते हैं, लेकिन मैं तो नंद और यशोदा की पूजा करूंगा क्योंकि उनके आंगन में स्वयं परम सत्य खेल रहे हैं। ये उनका ऐश्वर्य है नंद महाराज जी का, कि स्वयं परम सत्य जो है वहां क्रीड़ा कर रहे हैं। तो भक्तों को इस ऐश्वर्य को समझना है और इस ऐश्वर्य को आगे बढ़ाना है, इसको बचा के रखना है। जैसे कि रूप गोस्वामी कहते हैं, कुछ भी हो जाए हमें अपने हाथ से इस भक्ति को फिसलने नहीं देना चाहिए। इस भक्ति को, इस धन को लूटने कौन कौन आ सकते हैं? धन को, धन जहां होता है वहां लुटेरे भी आते हैं। तो इस भक्ति के लुटेरे कौन कौन है?
काम क्रोध लोभ,
छह प्रकार के अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, ईर्ष्या, पागलपन, काम वासनाएं, क्रोध, लोभ, ये भक्ति को हर लेते हैं, चुरा लेते हैं। इनको बोला गया हाईवे रॉबर्स। एक हाईवे पे हम जाते हैं तो कोई आ जाता, तुरंत गाड़ी रोके और सब कुछ लूट के चले गए। तो जब ऐसे हाईवे रॉबर्स आए हमारे को, काम वासना सताएं, क्रोध हो, लोभ हो, तो हाईवे में कुछ पुलिस भी होती है, पुलिस पोस्ट भी होती है। तो पुलिसमैन कौन है जो हाईवे रॉबर्स से हमें बचा सकते हैं? वो है हमारे आचार्य गण। जय प्रभुपाद। जब भी हमें ऐसी कोई चीजें सताएं, हम प्रभुपाद जी को पुकारें, पूर्ववर्ती आचार्यों को पुकारें, गौरांग महाप्रभु को पुकारें, वो तुरंत आएंगे और ये जो रॉबर्स हैं इनको भगा देंगे। शिला प्रभुपाद जी को एक भक्त ने चिट्ठी लिखी, मुझे काम वासनाएं बहुत सता रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला, जस्ट रिमेंबर माई इंस्ट्रक्शन, आई किक द माया विद माई बूट्स, अपने जूते से धुतकार दूंगा, चाहे माया कहां जाएगी। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हर हमारे पास कुछ एक समय होता है चॉइस करने के लिए, माया को चुनना है कि भगवान को पुकारना मदद के लिए। हम कहते हैं चलो माया को चुन लेते हैं, इस बारे में मैं क्या करूं, मैं तो असहाय हूं, हम माया को चुन लेते हैं। उस समय अगर हम भगवान को पुकारें, भक्तों को पुकारें, तो उस अटैक से हम बच सकते हैं। तो इस धन को संभाल के रखना है, इसको आगे बढ़ाना है। और जो भी लक्ष्मी हमारे भौतिक दृष्टि से हमारे पास है, ये बहुत चंचल है, ये केवल नारायण के चरणों में ही स्थिर रह सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत तुरंत इमीडिएटली नारायण की सेवा में लगानी चाहिए। हमारा मन उन्हें इतना धोखा देता है, अभी नहीं दे देंगे, चेक साइन करके रखा हुआ है, बस साइन करना है, बाद में दे दूंगा, अच्छा मौका आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, तब दे दूंगा। हमारा मन कहता है टालते रहो अच्छे काम को, लेकिन ये जो लक्ष्मी, हमें तुरंत भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तब ये असली हमारा ऐश्वर्य इकट्ठा होगा। अन्यथा ये जो अर्थ है हमारे लिए अनर्थ उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए आज के श्लोक से हमें सीख सकते हैं कि जो लक्ष्मी जो कि कृष्ण के वक्ष स्थल पे है, जितना हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, ये लक्ष्मी सीधा हमें देखती है और हम पे कृपा करती है। कृपा भगवान की समझना इतना आसान नहीं है, इस कृपा में कुछ कष्ट भी हमें उठाने पड़ सकते हैं, लेकिन हमें उसमें विचलित नहीं होना। और जब इन कष्टों को उठाते हुए इन कष्टों के समय अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं और भक्ति के अपने अंदर भक्तों के गुणों को विकसित करते हैं, तो भगवान पूर्ण रूप से अपने आप को दे देते हैं। इसी से भगवान आकर्षित होते हैं, ये हमारा असली ऐश्वर्य है। और इसको जो साधारण भौतिक ऐश्वर्य है वो टेम्परेरी है, और उससे हमें और हमारे अंदर लोभ बढ़ता है, हमारी इच्छाएं और बढ़ती हैं, और हम कभी संतुष्ट नहीं रह पाते। लेकिन इस जो दिव्य जो ऐश्वर्य है, इसमें पूर्ण रूप से संतुष्टि रहती है, और अब हमें इसका पूरा विकास करके और इसके पूर्ण रूप से रक्षा करनी चाहिए, और अपना सब कुछ हमें भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से जो पारिवारिक जीवन में लोग हैं, उनको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भविष्य के लिए धन रख के, बाकी जो धन है अपने जीवन को सादा बना के, कम से कम जरूरतें रख के, सब कुछ भगवान को समर्पित करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो देखा गया है, कुछ लोग बोलते हैं एमरजेंसीज के लिए काफी पैसा रखा हुआ है, तो भगवान कहते हैं एमरजेंसीज के लिए रखा हुआ है तो ठीक है, अभी एमरजेंसी भेजता हूं। देखा, और एमरजेंसीज आते हैं काले कोट वालों के रूप में और सफेद कोट वालों के रूप में। डॉक्टर और वकील सब कुछ हर लेंगे, मृत्यु के समान है वो, मृत्यु सर हरस चाहो। देखा लोग जाते हैं, आप किसी ज्योतिष के पास चले जाइए, बोला धन तो बहुत है, टिकेगा नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है, आएगा लेकिन चला जाएगा, और बीच में तुरंत अगर भगवान को समर्पित कर दिया तो कहीं नहीं जाएगा, वो हमारा ऐश्वर्य बनेगा। इसलिए उस धन को भी समर्पित करें, अपने आप को भी समर्पित करें, इस भौतिक उतार चढ़ाव से विचलित ना हो। यह समय होता है अपने अंदर अपने भक्तों के गुणों को विकसित करने के लिए, और यही कृष्ण को आकर्षित करता है, यही असली ऐश्वर्य है, क्योंकि ऐश्वर्य का अर्थ है जो कृष्ण को आकर्षित करे, सर्व आकर्षक को भी आकर्षित करे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न या टिप्पणी? यस
हरे कृष्ण भाई जी, ये लक्ष्मी जी वक्ष स्थल पे बैठना चाहती थी भगवान के, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब भगवान के वक्ष स्थल पे बैठना चाहती थी, ऐसा क्यों?
लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की भी सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पे खाली बैठना चाहती हैं, है ना? भगवान के चरणों की भी सेवा करते हैं, और साथ में जो चीज़ हमें बहुत प्रिय होती है, हम भी अपनी लक्ष्मी को पहले, आप देखा होगा पुराने समय में जो अपने दादाजी वगैरह को देखा होगा, एक अंडर गारमेंट जो होता था उसमें जेब होती थी, बिल्कुल हृदय के पास रखते थे तो जो चीज़ बहुत प्रिय होती है उसको हृदय के पास रखते हैं, तो दैट मोस्ट डियर थिंग।
वन मोर क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि हमको देखना चाहिए कि हम किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कि लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं भगवान को, और भगवान को अगर हम अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं तो टेंजिबल उसके रिजल्ट्स कैसे दिखेंगे?
भगवान को अगर हम अट्रैक्ट करने का प्रयास करें तो उसके टेंजिबल रिजल्ट्स क्या होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके रिजल्ट्स यही होंगे कि हम पूर्ण रूप से संतुष्टि, प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति हम आगे बढ़ रहे हैं, सेल्फ चेक, सेल्फ चेक यही है कि हमारी भौतिक इच्छाएं कम हो रही हैं और हम एक संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं, वी आर सेटिस्फाइड।
ये आपने कुछ दिन पहले एक लेक्चर में बताया था, जैसे जरासंध का एग्जाम्पल लिया था, जरासंध के अंदर सारी क्वालिटीज थी कि ना अतिथि का भी सत्कार, दान भी करना, ब्राह्मण सेवा भी करना, फिर भी जैसे मतलब वो भीम और अर्जुन उसके पास आए तो उन्होंने उनके पूरा वो किया, सत्कार किया, बट उसके बाद भी उसके अंदर वो चीज़ बनी हुई थी, मतलब ये सब होते हुए भी वो चीज़ बनी रहती है, तो उसको कैसे समझे?
हाँ, ऐसे बहुत से हमें लोग दिख जाएंगे जो तपस्वी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, क्षमा भी करते हैं, विनम्र भी हैं, लेकिन वो भगवान को समर्पित नहीं। ऐसे गुण को तपस्या से, इंद्रिय दमन से भी विकसित कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवान को ही समर्पित नहीं है, ये स्वरूप लक्षण है भक्तों का, और बाकी ये गुण जो तटस्थ लक्षण है, तटस्थ लक्षण विकसित कर लिए, स्वरूप लक्षण विकसित नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं। और भक्त हो सकते हैं जिनका स्वरूप लक्षण हो, भगवान को समर्पित हो, लेकिन अभी भी उनमें विनम्रता ना हो, क्षमाशीलता ना हो, सहनशीलता ना हो, तब भी वो उनसे बहुत आगे हैं, क्योंकि वो भगवान को समर्पित है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत ध्यान, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, बताए गौर प्रेमानंद।